सब ने लौट कर अल्लाह ताला के पास जाना है। हमने एक दिन हिसाब किताब देना है, हमने एक दिन मीज़ान का वजन उसकी जिम्मेदारी देनी है। हमने नाम है आमाल में से नेकियों और बदी का जवाब देना है। और इस मकसद के लिए अल्लाह वाहदहू ला शरीक ने अंबियाए किराम को भेजा। जब जब जहाँ जहाँ पर अल्लाह ताला की बताई हुई रहनुमाई पर चलना जब मुश्किल हो जाता हो, या कुफार और शयातीन की तरफ से मुवाहिदीन को तंग किया जाता हो, तकलीफ दी जाती हो, मुश्किल खड़ी की जाती हो, हर उस मौके पर अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों की मदद की है। हजरत मूसा का वाक़या देखें, हजरत नूह का वाक़या देखें, हजरत इब्राहिम के वाक़या देखें, हजरत हूद और हजरत लूत के वाक़या देखें, हजरत सालेह के वाक़या देखें, हजरत शुएब की तालीम देखें। अल्लाह ताला ने उनकी खूब मदद की है और उनकी रहनुमाई की है। और ज़ालिमीन और जो दीन के अल्लाह वाहदहु ला शरीक ने अपने अंबिया और अपने नेक बंदों को, अपने फरमाबरदार बंदों को कभी भी ज़ालिमों के हवाले नहीं किया। और यही से सिला जो चल रहा है कि जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा में मौजूद थे और आपको अल्लाह वाहदहु ला शरीक ने तौहीद की तालीम दी, तौहीद की रहनुमाई दी, तो आपने मक्का मुकर्रमा में ही हमारे दीन और तौहीद और ईमान के जो खद व खाल थे और बुनियादें थी, सहाबे किराम को वो पढ़ानी और सिखानी आपने शुरू कर दी थी। लेकिन जो माहौल पैदा कर दिया गया था और जिस तरह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में तकलीफें दी जा रही थी, इसी तरह जो आपके साथी सहाबा थे उनको भी तकलीफें दी जाती थी और उनके लिए परेशानियां खड़ी की जाती थी। और मुसलमानों ने वक्तन फवक्तन हिजरत की है, हबशा की तरफ हिजरत हुई है और उसमें कई मुसलमान मौजूद थे। और कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे, हजरत आप हमें इजाज़त दीजिए, हम यहाँ से चलते हैं, हिजरत करते हैं, ये शहर और ये इलाका अब इस काबिल नहीं है कि हम इसमें रहते हों और हम इसमें अल्लाह की इबादत करते हैं। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि माहौल का असर इतना ज़्यादा है और इतना बड़ा है कि अगर माहौल आपके मुआफिक है और फिज़ा आपके लिए साजगार है तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतों में से है। और खुदा ना खास्ता अगर माहौल आपके लिए साले और साजगार नहीं है तो फिर मुश्किलें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं और तकलीफें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि इंसान अपने आबाओ अजदाद का घर छोड़कर अपना कीमती शहर छोड़कर अपनी मोहब्बत वाली बस्ती छोड़कर जाने पर मजबूर होता है। और हदीस शरीफ में है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक आरामी आए और कहने लगे, बिल्कुल इब्तिदा की बात है हिजरत से पहले, तो आरामी आए और उन्होंने ईमान लाने की ख्वाहिश जाहिर की। आपने उनसे कहा कि आजकल जो मुश्किलात हैं वो बहुत ज़्यादा, हर यम शदीद, आजकल जो तकलीफ है वो ज़्यादा है। और आपने फरमाया कि तकलीफें और मुश्किलात ईमान वालों पे ऐसे आती हैं जैसे दीवार पर बारिश का पानी है। और आपने उनसे कहा क्या करीब अल्लाह ताला मुझे हिजरत की इजाज़त दे देंगे और हमारा दीन जज़ीरतुल अरब में फैलने लगेगा। और फिर जब आपको खबर मिल जाए तो आप आए और फिर आपको हम जो दीन की तालीमात हैं वो बताएंगे। तो अजीब बात यह है, उलमा कहते हैं अल्लाह ताला ने अम्बिया को दीन की तालीम और दीन की तबलीग और दीन की तरक्की के लिए भेजा है, जबकि हदीस शरीफ में मौजूद है जो वाक़या हमने बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी आए और उन्होंने ईमान लाने की ख्वाहिश जाहिर की और आपने फरमाया कि आजकल तकलीफ ज़्यादा है मुश्किलात ज़्यादा है। मकाम है और मनसब है वो तो तबलीग। उलमा इस बात का जवाब ऐसे देते हैं कि अम्बिया का मकाम और मनसब यकीनन दीन की तबलीग और तरबीज है, लेकिन अल्लाह ताला ने अम्बिया को सदाकत और सच और हक के बोल वाले के इजहार के लिए भेजा है। और अम्बिया इकराम की ये खुसूसियत है और ये मौजज़ा है कि कभी भी किसी भी पैगंबर से झूठ या झूठ जैसी कोई चीज़ या धोखा या इस जैसी कोई चीज कभी सरजद नहीं। और फिर आगे उलमा ने ये बात मसला लिखा है कि अगर कोई शख्स किसी को धोखा दे के मुसलमान करता है और दीन में दाखिल करता है तो ये जो इसका अमल है ये काबिले कबूल नहीं। और इस्लाम की जो अव्वलीन तालीमात हैं उनमें से सबसे जो ज़्यादा अहम तरीन तालीम, इस सारी तमहीद का मकसद ये है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक के नेक बंदे और अम्बिया और मुरसलीन और अवलिया और सुलहा वो हमेशा के लिए अल्लाह बुजुर्गो बरतर की बताई हुई तालीमात और अमल को तरजीह देते हैं। किस चीज़ पर? अपने मुल्क पर, अपनी ज़मीन पर, अपनी कौम पर, अपने इलाके पर, अपने खानदान वालों पर, अपने घर वालों पर। और यही जो हिजरत की अजीम सुन्नत है, रोए ज़मीन पे दुनिया के अंदर एक मुल्क हमारा मुल्क, ये वो वाहिद मुल्क है। इस मुल्क की जो बुनियाद है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में मुहाजिर बनकर आए थे और फिर आप हमेशा के लिए वहीं के रहे, और आपने अल्लाह ताला से दुआ भी की कि अल्लाह मुझे जब आप उठाएं तो आप मुझे मदीना के लोगों के साथ उठाएं। और एक मौके पे मदीना के सहाबा ने माल गनीमत के बारे में कोई बात की, और इंसान की फितरत है और आदत है, जो दुनिया की चीज़ें हैं और दुनिया के सबब हैं अगर वो उसको ज़्यादा मैसर आ जाते हैं तो खुशी होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पूरी बात सुनी और फिर आपने फरमाया कि देखो ये मुख्तलिफ इलाके के लोग आए हैं, कोई गनीमत लेके जा रहा है, कोई सोना लेके जा रहा है, कोई चांदी लेके जा रहा है, लेकिन तुम जो मदीना वाले हो तुम्हें सबसे ज्यादा इस बात की खुशी होनी चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा मक्का में मुसाफिर की नमाज पढ़ी। मक्का वालों ने आपसे पूछा कि हजरत आप तो मक्की हैं और आपसे बड़ा मक्की कोई है ही नहीं, आप बनू अब्दुल मुत्तलिब से हैं, आप बनू हाशिम से हैं, आप कुरैश में से हैं, आप यहाँ मुसाफिर कैसे हैं? आपने फरमाया कि जब अकील ने अभी तालिब ने हमारी ज़मीनें बेच ली, कब्ज़ा कर ली, तो अब हमारे पास कुछ मौजूद ही नहीं। और ये इस्लाम का कायदा है कि मुसलमान काफिर का वारिस नहीं है और काफिर मुसलमान का वारिस नहीं। अबू तालिब के दो बेटे इस्लाम ला चुके थे, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला और इसी तरह हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला, और जो दीगर थे अकील लोग था वो इस्लाम नहीं लाया और उसने मक्का की सारी चीज़ें बेच दी। कोई और मजहब होता या कोई और कानून होता वो जाके चीज़ें वापस छीन लेते और आसान सी बात थी कि ये इन्होंने हमसे कब्जा करके बेची थी, गलत बेची थी, वापस कीजिए। लेकिन इस्लाम का इंसाफ देखिए कि अगरचे उसने नाहा भी, लेकिन जब एक दफ़ा मिल्कियत हो चुकी है और कोई ख़रीदने वाला उसको ख़रीद चुका है, तो अब इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप शहर पर हमला करें और अपनी जायदादें वापस ले लें, इसकी इजाज़त नहीं। बल्कि इसका हल वो काजी है, वो अदालत है, वो दुनिया और शरीयत के कवानीन है, उसके मुताबिक आप अपना मुकदमा कीजिए। और अगर वाकयातन आप मालिक हैं तो इस्लाम के कानून में इतना ज़बरदस्त इंसाफ मौजूद है कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि जो असल हकदार होगा, जो असल मालिक होगा, इस्लाम का कानून उसके लिए फैसला देगा। और हिजरत की वजह क्या थी? हिजरत की वजह वो ये थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे तो मुशरिकीन आपकी पीठ मुबारक पर ऊँट की पूंछड़ी लाके रखते थे, और जब मुसलमान इबादत करते थे तो कुफार और मुशरिकीन उनकी तख़दीर करते थे, उनको किस्म किस्म की तकलीफ़ें देते थे। बुखारी शरीफ में एक दर्दनाक वाक़या मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में हतीब में इबादत कर रहे थे और आप जब नमाज पढ़ रहे थे तो कुफार का एक बड़ा मुशरिक था, उतबा इब्ने अबी मुईद, वो और उसके साथी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और उन्होंने आपके गले में अपनी चादर डाली और उसको ऐसा खींचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सांसें रुक गई और आपको तकलीफ हुई। और फिर कहने लगा कि कोई शख्स ऐसा है जो जाए और जानवरों की जो आलाइश होती है, ऊजड़ी होती है, फेफड़े होते हैं, गंद मला होता है, वो ले आए और आपके ऊपर रखे, और अल्लाह के रसूल याद रखिएगा और इस कायनात के अफजल तरीन अल्लाह के बंदे हैं। सहाबा कहते हैं हम दूर दूर से देखते थे लेकिन हालात इतने सख्त थे और मुश्किलात इतनी ज़्यादा थी कि किसी की मजाल नहीं थी कि वो जाकर आपका साथ दे या आपका दिफा करे या किसी भी तरीके से आपके हक में इजहार करे, की इजाज़त नहीं थी। और हदीस शरीफ में आता है कि आपकी बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आई और उन्होंने आके आपके ऊपर से वो सारी आलाइशें हटाई, वो सारी गंदगियाँ हटाई और वो रो रही थी। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि एक बाप का भरम बेटी के लिए बहुत ज़्यादा और मोहतरम है और बाप मर जाता है, कट जाता है, लेकिन औलाद और बेटियों के सामने वो बेइज्जती कबूल नहीं करता। लेकिन अल्लाह के महबूब पैगंबर उन्होंने दीन के लिए जो तकालीफ उठाई है और जो मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि हज़रत अगर आपकी जगह पे पहाड़ होता तो वो पहाड़ जगह छोड़ देते। फिर ये सिर्फ नहीं, आपके लिए बायकॉट, और फिर ये कि ना हम इस ख़ानदान से शादी करेंगे, ना हम इस ख़ानदान से गम और खुशी करेंगे, ना हम इस खानदान के साथ उठेंगे बैठेंगे, आपको एक वादी में ले जाके बंद कर दिया। और हदीस शरीफ में आता है कि आप और आपके सहाबा इतनी मुश्किल में होते थे कि कई कई दिन गुजर जाते थे, खाने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं होती थी। और मुसलमान अपनी तसल्ली के लिए जो चमड़ा होता है वो चबाते थे, चमड़े को चबाने की कोशिश करते थे। चमड़े में कोई जायका नहीं है, वो खाया भी नहीं जाता। ये वो वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह वहदहू ला शरीक से उम्मीद है, अन करीब मुझे इजाज़त मिलेगी हिजरत की। और आपको जब इजाज़त मिली, आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, वहाँ पे हालात बदल गए और अल्लाह ताला ने वहाँ पे एक ऐसी इस्लामी रियासत कायम फरमा दी कि जिसके अंदर तमाम जो खूबियाँ होनी चाहिए थी वो मौजूद थी। और बिल्कुल यही जो नक्शा है और यही जो हिस्ट्री है और वाकयात है, ये हमारे बर सग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों पर भी सादिक आते हैं कि अंग्रेज़ ने जब बर सग़ीर पे कब्ज़ा किया तो उसने मुसलमानों को तो किसी सूरत में भी इक़्तदार दीन नहीं दिया। और उसकी कोशिश यही थी कि हिंदुओं को इक़्तदार दें, और उसके लिए उन्होंने एक शोशा छोड़ा जमहूरियत कि जी गिनती करेंगे जिस कौम के बंदे, जिस मजहब के बंदे ज़्यादा होंगे उस कौम और उस मजहब के लोग हुकूमत करेंगे, और बाकी लोग जो होंगे वो उनके महकूम होंगे, गुलाम होंगे। और उस ज़माने में जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान की मरशुमारी हुई है और जो गिनती हुई है, कहते हैं कि 40 करोड़ के करीब थी। और 40 करोड़ में से 30 करोड़ हिंदू थे और 10 करोड़ मुसलमान थे। तो अंग्रेज़ ने ये प्रोग्राम बनाया, ये मॉडल बनाया कि मुसलमान तो बहुत कम है और हिंदुओं को सादा अक्सरियत मिल चुकी। तो उन्होंने कहा कि हुकूमत होगी और हुकूमत हिंदुओं की होगी, और मुसलमान चूँकि तादाद में कम है, आबादी में कम है, तो लिहाजा उनके लिए हुकूमत में कोई इतने ज़्यादा काबिल कदर जगह नहीं। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, तसव्वुर कीजिए कि हमारी मुमलकत खुदादाद अगर अल्लाह ताला हमें नसीब न करते तो आज हम गुलाम होते, आज हम हिंदुओं के महकूम होते, और हिंदुओं के साथ जो मुसलमान रहते हैं उनसे आप जाके पूछिए हिंदुओं की हकीकत क्या है और हिंदू किस कदर मुसलमानों से दुश्मनी रखते हैं और कितनी ज़्यादा बोझ रखते हैं, हसद रखते हैं। बात बात पे मुसलमानों को कत्ल करना उनके लिए कोई बात ही नहीं है। ये कायनात के ह्यूमन राइट्स के जो ठेकेदार बनते हैं और जो बड़ी बड़ी एनजीओस चलाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन बेगैरतों को ये शर्म नहीं आती कि खुले आम गाय गले में मुसलमानों को कत्ल किया जाता है, एक जानवर के बदले में इंसान को ज़बह करते हैं, हालांकि वो जानवर वो खुद भी खाते हैं, अंग्रेज़ भी खाते हैं, मगरब वाले भी खाते हैं, लेकिन नहीं, जब वहाँ पे उनका जो कानून है और उनका जो तरीका है उसका साथ देते हैं। हालांकि हम अगर एक बिली के बदले में भी किसी इंसान को अलैहिज़्ज़बिल्लाह कत्ल कर दें या ज़बह कर दें तो उसके बाद जो क़यामत होगी, जो शोर होगा, वो आप जानते हैं। लेकिन नहीं, अभी कुछ दिनों पहले एक मस्जिद के इमाम को, जो इमाम बाकायदा दुआ करते थे कि अल्लाह हिंदुओं को और मुसलमानों को एक साथ कर दे, उस बेचारे को कत्ल कर दे। तो ये कोई फजूल सी बात नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है। हमारे बड़ों ने, असलाफ ने एक अलग मुसलमानों के मुल्क का मुतालबा किया था और मुसलमानों के लिए एक ज़मीन के खित्ते का मुतालबा किया था। ये ऐसे ही इन्होंने बैठे बैठे नहीं किया था, बल्कि इसके पीछे एक दास्तान थी और इसके पीछे एक हकीकत थी। और फिर उसको रुकावट के लिए दुनिया की कोई ऐसी हरबा नहीं था, कोई ऐसी साजिश नहीं थी, कोई ऐसा तरीका नहीं था जो हिंदुओं ने और अंग्रेज ने आजमाया ना, कि किसी भी तरह कुछ भी हो लेकिन मुसलमानों का अलग मुल्क नहीं बनना चाहिए। लेकिन अल्लाह वहदहू ला शरीक को जो मंजूर था वो होना था, और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को पाकिस्तान में एक ऐसा मुल्क दिया कि उस मुल्क में हमें वो वाली आज़ादी मिली जो आज़ादी सहाबा किराम को मदीना में मिली थी। और इस मुल्क में जैसा भी है, शिकायतें अपनी जगह हैं और दुरुस्त हैं, लेकिन अगर कोई शख्स कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है, वो जितने भी गुनाह करता है और वो जितनी भी बदअमली करता है, लेकिन वो काफिर नहीं है। और वो जैसे भी अमल करता है तो जो दुनिया का दस्तूर है और शरीयत का उसूल है, उसको आप फासिक कहेंगे, आप उसको फाजिर कहेंगे, आप उसको बदअमल कहेंगे, लेकिन आप उसको काफिर नहीं। तो अल्लाह वहदहू शरीक ने जो हमें मुल्क दिया है, इस मुल्क के अंदर मुसलमानी की अलामत क्या है वो भी ज़रा देखिए। पूरे कुर्रे अर्ज में तो पूरे कुर्रे अर्ज में आप देखिए, मुसलमानों के मुल्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसी भी मुल्क के कानून में या उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात मौजूद नहीं है कि इस मुल्क पे और इस ज़मीन में अल्लाह का जो हुक्म है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है। यहाँ तक के हरमैन शरीफ़ैन की अजमतें अपनी जगह पे हैं, और वही ज़मीन पे अगर जन्नत के टुकड़े हैं तो वो हरमैन शरीफ़ैन हैं, लेकिन वहाँ का जो दस्तूर है, वहाँ दस्तूर है ही नहीं, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ पे कानून नहीं है, वहाँ पे जो बादशाह के अहकाम होते हैं, अम्र मलकी होता है वो कानून। तो हमारा मुल्क जैसा भी है, लेकिन याद रखिएगा जो करारदादे मकासिद पास हुई थी उसमें पहली बात और वाज़ेह तौर पे जो बात कही गई थी वो ये थी कि हुक्म अल्लाह का, अमर अल्लाह का है, और अल्लाह ताला जो फरमाते हैं वो हुक्म सबसे ज़्यादा तरजीह उसको दी जाती है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, पूरी दुनिया में कुर्रे अर्ज़ में कोई भी मुल्क आप ऐसा दिखा दीजिए कि उस मुल्क के दस्तूर के अंदर ये बात मौजूद हो, मौजूद नहीं। और फिर हमारे दस्तूर के अंदर ये बात मौजूद है कि इस मुल्क में वही कानून होगा जो कुरान और हदीस, सुन्नत और सहाबा के कानून के मुताबिक, और जो चीज़ कुरान और सुन्नत, सहाबा, ताबईन, आइम्मा के हुक्म के खिलाफ होगी वो गलत है। आप जाइए और दुनिया में देखिए, पूरे प्लेनेट अर्थ पे, कुरे अर्ज पे आप जाके देखिए, ऐसा मुल्क दिखा दीजिए कि जिस मुल्क के दस्तूर के अंदर ये चीज़ें मौजूद हों, नहीं है। और फिर आजकल लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रोज़ाना सुबह सुबह दाढ़ी शेव करके, टाई लगा के दफ्तर में जाके बैठते हैं और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले करते हैं। जब पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हो गई तो कायदे आजम मोहम्मद अली जनाह ने किन लोगों को पाकिस्तान के झंडा लहराने की दावत दी, ये भी जरा देखिए, तारीख गवाह है। मशरिकी पाकिस्तान के अंदर हजरत मौलाना जफर अहमद उस्मानी जो है ना, उस्मान के मुसन्निफ हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, उनको दावत दी कि आप आइए और आप जो हमारा झंडा है वो लहराइए। और हमारे मगरबी हिस्से में हजरत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी जो बहुत बड़े आलिम थे और कोई तारुफ के मोहताज नहीं, उन्होंने झंडा लहराया। आज हर फिरका उठता है, बिदती कहते हैं कि ये हमारा है, रवाफिस कहते हैं कि ये हमारा है, गैर मुकल्लिद कहते हैं कि हमारा है, ज़रा देखो तो सही, तुम्हारे उलमा तो वहाँ नहीं थे, तुम्हारे बड़े तो नहीं थे, ये तो तुम अब आए। जब हलवा बटने का वक्त आता है तो सब आ जाते हैं, जब तकलीफ का वक्त आता और जब मुश्किलात उठानी पड़ती थी, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तमाम खुलफा को ये ताकीद की थी कि पाकिस्तान की तहरीक में आप लोग हिस्सा लीजिए। और कितनी तकलीफें थी आप जरा इमेजिन करें, आप कोई बात करें कि मैं मुल्क बना के दे, तो उसके साथ जो सख्ती होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, शदीद होगी। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे बड़ों को, हमारे उलमा को ऐसी तौफीक दे दी थी कि जिस तरह मदीना मुनव्वरा में जो उसकी बुनियाद रखी थी वो एक मजहबी तबके ने रखी थी, और मदीना मुनव्वरा की बुनियाद मजहब की आज़ादी के न होने की वजह से, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क की बुनियाद वो एक मजहबी तबके के हाथों पे रखी, और उसकी वजह भी यही थी कि हम हिंदुओं के साथ रहकर अपनी जो मजहबी इबादतें हैं, अपने त्यौहार हैं, अपनी मजहबी तमात हैं, उसको सही से पूरा कर सकते नहीं थे। तो इसलिए हमारे बड़ों ने कोशिश की है और उस कोशिश को अल्लाह ताला ने बराबर किया है, और खराबियां मौजूद हैं और यकीनन मौजूद हैं, लेकिन जो हमारा क़िबला है वो दुरुस्त है, जो हमारा असल मकसूद है वो ठीक है, जो अंदर की खराबियां हैं हमारी अपनी वजूहात से, हमारी अपनी गफलतों से वो पैदा हुई हैं, उसकी इस्लाह कैसे होगी, उसकी इस्लाह हम करें। हमें झूठ बोलने पे जो मजबूर कर रहा है उसको छोड़ दें, गीबत पे जो मजबूर कर रहा है वो आदतें छोड़ दें, लोगों के बारे में गलत राय फैलाने की जो आदतें हैं छोड़ दें, अफवाहें फैलाने की आदतें छोड़ दें, अपने मुल्क के बारे में उसकी खुशगुमानी को आगे बढ़ाएं। अल्लाह ताला के ख़जानों में कोई कमी नहीं है, और वो दिन दूर नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क को भी खोई हुई इज्जत और वो आबरू और वो मकाम नसीब करेंगे। है कि क्या सिर्फ 10 मुहर्रम का रोज़ा रख सकते हैं? असल में जो 10 मुहर्रम का रोज़ा है, इसके बारे में इमाम मौलाना साहब हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने कायदा लिखा है, और वो कायदा ये है कि 10 मुहर्रम के रोज़े की 3 सूरतें। एक सूरत ये है कि 9वीं को भी रोज़ा रखें, 10वीं को भी रखें और 11वीं को भी रखें। दूसरी सूरत ये है कि 9-10 को रखें या 10-11 को रखें। और तीसरी सूरत ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ अकेले 10 मुहर्रम का रोज़ा रखें। ये तीनों सुन्नत है, लेकिन सुन्नत के मेयारों में फ़र्क है। कुछ अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से साबित होता है, कोई अमल आपके फ़ैल से साबित होते हैं, कोई अमल आपकी तरतीब से साबित होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक रोज़ा ही रखा था, लेकिन आपने इस बात का इजहार फरमा दिया था कि अगर अगले साल में मौजूद रहा तो मैं 10 के साथ 11 को मिला लूँगा। और उसकी वजह ये थी कि यहूद आशूरा के दिन रोज़ा रखते थे और वो खुशी मनाते थे और कहते थे कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में हमें फ़तह दी थी, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात के तो असल वारिस मुसलमान हैं, जो कुरान करीम में जा बजा उनका ज़िक्र मौजूद है, हदीस में ज़िक्र मौजूद है, तो हम उनके ज़्यादा वारिस भी हैं और हकदार भी हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रम को रोज़ा रखने की तरतीब भी फरमाई और ख़ुद भी रखा है। लेकिन याद रखिएगा कि इस रोज़े का ताल्लुक़ करबला से नहीं है, क्योंकि करबला तो सन 61 हिजरी में वाक़ हुआ है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रोज़े रखे हैं ये रमज़ान मुबारक की फ़र्ज़ियत से पहले के वाक़ात हैं। दोनों वाक़ात के बीच में तकरीबन 70 साल का फ़र्क है, इसलिए उसको समझ लेना ज़रूरी है। पूछा है कि क्या करेंसी की तब्दीली में जो कमी पेशी होती है वो जायज़ है? जायज़ है। उलमा ने इसके जवाज़ का फतवा दिया है, इसलिए कि करेंसी के अंदर जो कारोबार है असल में तो वो है ही कि आप एक करेंसी लेते हैं, फिर उसको बेचते हैं, दूसरी करेंसी लेते हैं, उसको बेचते हैं। अगर ये मिन वांग उसी माल के ऊपर बेचा जाए जो मार्केट में है तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, और करेंसी वाले जो लेन देन करते हैं वो फ़ायदे के लिए करते हैं और वो आपको बता के करते हैं। इसलिए उलमा ने इसमें दोनों करेंसियों के दरमियान में जो सर्विस चार्जेस हैं या फ़र्क है उसकी इजाज़त दी है। क्या 10 मुहर्रम के दिन अच्छा खाना बनाना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है। सुनना था मन वसा अला आयालिही वसल्लल्लाहु अलैहि यौमा मस मन वसा अला आयालिही यौमा आशूरा वसा अल्लाहु अलैहि कुल सना। हदीस शरीफ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आशूरा के दिन अपने घर वालों पे, अपने जानने वालों पे, अपने रिश्तेदारों पे वसत करता है, अल्लाह ताला सारे साल उस पर वसत करते हैं। हदीस की सनद कमज़ोर है, लेकिन हदीस फुकहा के नज़दीक मकबूल है। और याद रखिएगा कि जैसे मुहद्दिसीन की अपनी सनदें हैं, सूफिया की अपनी सनदें हैं, इसी तरह फुकहा की अपनी सनदें हैं, और उन सनदों पे ये हदीस पूरी उतरती है, इसलिए इस पर अमल किया जाए तो अमल न करने से बेहतर है, ज़्यादा अफजल। पूछा है कि क्या हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआविया से कहा तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को कत्ल करेगा, ये हदीस झूठी है, हदीस नहीं है, मौजू है, किसी ने अपनी तरफ से बनाई है, ज़खीरा है, हदीस के अंदर ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है। रवाफिज एंड कंपनी ने अगर बनाई है तो अलग बात है। पूछा है कि रोज़गार के हुसूल के लिए कोई अमल बता दीजिए। फजर की नमाज के बाद जहाँ पे आपने नमाज़ पढ़ी है वहीं पे बैठे बैठे, वहाँ से आपने उठना नहीं है, सूरज के निकलने से पहले पहले 70 मरतबा सूरह शूरा की आयत नंबर 19 अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यरज़ुकु मन यशाउ वहुवल क़वीयुल अज़ीज़, 70 मरतबा ये आयत सीधे हाथ के पोरों पे पढ़ें और इसकी पाबंदी करें, अल्लाह ताला आपके लिए गैब से बेहतरीन रज़क अदा कर देंगे। पूछा है कि मुहर्रम के महीने में निकाह करना कैसा है, बाज़ लोग मना करते हैं। असल में अल्लाह ताला के यहाँ तमाम महीने बराबर हैं और ये जो महीनों में आगे पीछे करते हैं ये मुशरिकीन की आदत थी। इन्नम नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्र, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ये जो मुशरिकीन महीनों में कैलेंडर में करप्शन करते हैं ये ज़्यादती है, ये गुनाह है। और वो क्या करते थे कि मुहर्रम को पीछे करते थे, सफ़र को आगे करते थे, और कभी कहते थे कि इस महीने में नहुसत है, कभी कहते थे इस महीने में फलाँ है, इस महीने में हमारे बुतों की पूजा होती है, सब बातें गलत हैं। हज़रत मौलाना इदरीस कांदेलवी रहमतुल्लाह अलैह सीरत मुस्तफ़ा में क्या लिखा है हज़रत ने, वो ज़रा चेक कीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत फ़ातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो निकाह हुआ है वो या मुहर्रम में हुआ है या सफ़र में हुआ है। और ज़ुल्म देखें कि यही दो महीने हैं कि जिसमें मुसलमान आज निकाह करने से बचते हैं। और क्या मुहर्रम में आप निकाह नहीं करना चाहते, क्यों नहीं करना चाहते? शहादत हुसैन की वजह से, तो क्या किसी और महीने में शहादत नहीं हुई? हज़रत उमर की शहादत फिर दर्जे पे हुई और इसी तरह दीगर जो सहाबा किराम हैं, लाखों सहाबा ने शहादत दी है, कुर्बानियाँ दी हैं। अगर मेयार ये है तो फिर साल का कोई ऐसा महीना नहीं है जिसमें आप शादी कर सकते हो। और अगर ये मेयार नहीं है और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस महीने में इस दुनिया से पर्दा फरमा के चले गए हैं उस महीने में तो आप शादी करते हैं, और करबला के महीने में आपको शादी से डर लगता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ बिदअत है, हकीकत है इसके अंदर कोई दलील कोई हकीकत मौजूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्क वलहुल हम्द वहुव अला कुल्लि शैइन कदीर। اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين। आने वाले चंद दिनों में सफ़र उम्र का इरादा भी है। हज़रत वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह के बग़ैर पहली दफ़ा हिम्मत हुई है कि जाएँ, तवाफ़ करें, इबादत करें, अल्लाह से मांगें, दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमारा सफ़र कबूल करें और आसान करें, और जितनी भी दुआएं हैं अल्लाह ताला आपके और हम सब के हक में कबूल और मकबूल करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।